प्रणाम। तो आज हमारा तीसरा अंतिम चरण है 3 दिनों के इस कार्यक्रम का, और आज हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। अगर आपको आत्मज्ञान और माया के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते।
कोई प्रश्न नहीं, दोनों समझ आ गया
बहुत अच्छी बात। तो हम शुरू करते हैं, और वैसे ही
जी।
शुरू करेंगे, अप्रोक्ष अनुभव से ही शुरू करेंगे। अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, इससे हम शुरू करते हैं। तो अभी आप कहाँ पर हैं?
रूम में
अच्छा, क्या रखा है आपके सामने?
अलमीरा
अलमिरा। और आप में कितनी दूरी है?
3 फीट है,
कैसे आपने नापा उसको?
अनुभव से
कहाँ से कहाँ तक
अंदाजा।
नापा?
जो गैप है हम दोनों के बीच,
हाँ, कैसे नापा आपने? किसके और किसके बीच में आपने नापा है गैप?
अलमीरा और मेरे बीच
आपका बीच कहाँ पर है?
दूरी जो वो है वो बीच।
अगर टेप से नापा होगा तो आपने टेप कहाँ पर रखा होगा? एक सिरा अलमीरा पर रखा होगा, दूसरा कहाँ रखा होगा?
दूसरा मेरे मेरे शरीर के साथ
लेकिन मैंने शरीर से तो दूरी पूछी नहीं है। मैं तो आपसे पूछी, आप तो
मेरे
भूल
से
गए एक
कोई
दिन में।
दूरी, मेरी तो कोई दूरी नहीं फिर।
कैसे नापेंगे बताइए? शरीर से? हाँ, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच दूरी हो सकती है। आप में और जो अनुभव है उसके बीच में कितनी दूरी है,
कोई दूरी नहीं है,
इसमें कोई शंका तो नहीं?
नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनुभव करता है वो अनुभव कर रहा है, उसमें कोई दूरी है
हाँ,
ही नहीं। जैसी मैं हूँ मतलब अनुभव भी साथ।
जहाँ अनुभव है वहीं अनुभव करता है, और जहाँ अनुभव करता है वहीं अनुभव है ना?
जी
बीच
जी
में गैप नहीं। अच्छा, अनुभव पहले आता है या अनुभव करता पहले आता है?
पहले अनुभव करता फिर अनुभव।
अच्छा, तो अगर पहले अनुभव करता आता होगा तो वहाँ कोई अनुभव रहता नहीं होगा फिर? कैसा होता है कि अलमिरा
नहीं
दिखाई नहीं
ऐसा,
देता,
दोनों
पहले आप होते हैं?
दोनों नहीं, दोनों साथ में ही।
आज तक ऐसा कभी हुआ है कि पहले आप पहुंच गए उसके बाद धीरे धीरे दृश्य आ रहा है सामने?
नहीं
हाँ, या ऐसा तो नहीं कि पहले दृश्य होता है अनुभव करता बाद में आता है?
कभी नहीं,
एक साथ ही होते हैं दोनों, है ना?
दोनों एक।
कभी ऐसा देखा है आपने कि अनुभव हो और अनुभव करता गायब हो?
फिर अनुभव ही नहीं होगा फिर।
हाँ, और कभी ऐसे देखा है कि अनुभव करता हो और अनुभव ना हो?
नहीं
ऐसा भी नहीं। ऐसा क्यों है? दोनों साथ में क्यों है, और दोनों के बीच कोई दूरी, कोई समय, किसी भी तरह की दूरी नहीं है, किसी भी तरह का अलगाव नहीं है, ऐसा क्यों है?
पता नहीं।
जैसे एक सिक्का होता है, उसके दो चेहरे होते हैं, क्या सिक्का बिना एक चेहरे के मिलता है कभी?
नहीं
क्या दोनों चेहरे अलग अलग पाए जाते हैं उसके?
जी,
अलग अलग पाए जाते हैं,
हेड एंड टेल
हाँ, लेकिन एक जगह हेड है दूसरी जगह टेल है, ऐसा होता है या
नहीं,
वही
एक ही
होता है?
सिक्के में है दोनों चीज।
हाँ, ऐसा तो नहीं कि एक जगह हेड पड़ा है और टेल गायब है, ऐसा तो नहीं?
नहीं ऐसा नहीं
अच्छा,
होता।
क्यों है ऐसा कि दोनों हमेशा साथ में है और दोनों के बीच, दोनों चेहरों के बीच में दूरी नहीं है?
क्योंकि उनके बीच कोई दूरी ही नहीं है।
हाँ, क्योंकि वो एक वस्तु है, सिक्का एक है, उसके दो चेहरे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुभव और अनुभव करता एक है, एक चीज है, उसके दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, दो चेहरों का ज्ञान हो रहा?
एक ही है
ये तो हो गया अप्रोक्ष अनुभव आपका, कि दूरी नहीं दिखाई पड़ती। और तर्क भी यही कहता है कि एक के बिना दूसरा नहीं है, पहले के बिना दूसरा नहीं, और उपमा भी यही कहती है, सिक्के की उपमा। ऐसे कैसे संभव है कि एक बदल रहा है दूसरा नहीं बदल रहा है? ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि सिक्के में तो दोनों नहीं बदलता, दोनों चेहरे नहीं बदलते, वहां ये उपमा काम नहीं कर रही। तो ऐसे कैसे संभव है कि एक बदल रहा है दूसरा नहीं बदल?
क्योंकि अनुभव
अगर
करता कभी बदलता ही
दोनों,
नहीं है।
अगर दोनों एक ही, दोनों बदलना चाहिए या दोनों को एक जैसा रहना चाहिए?
नहीं, क्योंकि वो असत्य है, मिथ्या है, इसलिए वो बदलते रहता है।
हाँ, वो अनुभव जो है असत्य है, मिथ्या है, इसलिए बदलता रहता है, लेकिन अनुभव
बदलता
करता नहीं बदलता, लेकिन
नहीं
दोनों एक ही।
बदलता।
हमारे अनुभव के अनुसार, हमने जो टेस्ट की अभी बैठे बैठे, उससे यही पता चलता है कि दोनों एक ही चीज है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जा रही है, लेकिन एक ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बदल रही है उसमें से एक? अगर वो एक ही चीज है, सारे का सारा बदलना चाहिए। तो इसको हम दूसरे उदाहरण समझ सकते हैं, जो है घड़े और मिट्टी का। अगर गीली मिट्टी है तो उसका घड़ा बनाया जा सकता है, फिर उसको तोड़ के कुछ और बनाया जा सकता है, मान लीजिए फ्लावर पॉट, तोड़ के उसकी मूर्ति बनाई जा सकती, उसी को ईंट में बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है जो नहीं बदल रहा और क्या है जो बदल रहा है?
उसका अस्तित्व जो मिट्टी का अपना खुद का वो है,
बड़ा आसान है, देखिए, मिट्टी नहीं बदल रही, उसका रूप बदल रहा है,
रूप बदल रहा है।
उसका
हाँ वही चीज,
उसका आकार बदल रहा है।
मतलब उसको, मतलब हम घड़े के रूप में भी देंगे तो हम बोलेंगे मिट्टी का घड़ा है, और वो
हाँ,
अगर उसको पॉट नहीं बना रहे तब भी हम बोलेंगे ये मिट्टी है।
मिट्टी।
मतलब यहाँ पे जो चीज नहीं बदल रही वो मिट्टी है,
हाँ, और जो बदल रहा है वो आकार है,
उसके
नाम रूप है।
आकार रूप। जी जी
अब आप देखिए अनुभव और अनुभव कर्ता को देखिए, जो बदल रहा है वो नाम रूप है, तरह तरह के आकार है, तरह तरह के क्या कहते हैं सेंसेशन है, अनुभव है, लेकिन जो नहीं बदल रहा वो वैसा का वैसा ही है। जो उसका पर्दा है, जिस पर्दे पर वो सब बदल रहा वो वैसा ही है। तो हम कहते हैं कि ये अस्तित्व है, अस्तित्व के दो चेहरे हैं, एक है अनुभव, एक है अनुभवकर्ता या दृष्टा, और एक जो है उसका तत्व है जो बदलता नहीं कभी। जैसे मिट्टी है, घड़े का तत्व है, वो बदलता नहीं, रूप लेता है नए नए, और वैसे ही अस्तित्व है उसका एक तत्व जो बदलता नहीं है, वो अनुभव करता है, और जो दूसरा है जो रूप लेता है वो अनुभव है। अब समझा जा सको, क्योंकि घड़े के बिना मिट्टी नहीं होती, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं होता, या किसी भी रूप के बिना नहीं होती मिट्टी, कोई भी रूप बिना मिट्टी के नहीं होता। उसी तरह से ये दोनों हमेशा साथ में पाए जाते, बिना अनुभव के नहीं होता अनुभव करता, बिना अनुभव करता के अनुभव नहीं, दोनों एक ही है। जैसा हमने कल देखा था कि सारा अस्तित्व यही दो चीजें हैं, अस्तित्व में यही दो पाए जाते हैं, एक अनुभव करता, और कुछ तीसरा नहीं पाया जाता। तीसरा कुछ होता तो या तो अनुभव होता किसी तरह का, या तो अनुभव करता ही होता स्वयं। तो हम कहते हैं सारा अस्तित्व केवल अनुभव और अनुभव करता ही है, और हमने देखा कि दोनों एक ही है। और क्योंकि एक जो है केवल नाम रूप है, केवल रूप लिया जा रहा है, दूसरा उसका तत्व है, दूसरा सत्य है, और वो सत्य मैं हूँ। इस तरह से संपूर्ण अस्तित्व मैं हूँ, मैं ही हूँ जो अस्तित्व हूँ, और मैं ही हूँ जो तरह तरह के रूप में खुद के सामने प्रकट होता हूँ। रूप मिथ्या है क्योंकि बदल रहे हैं। देखिए हमारी जो सत्य की परिभाषा है वह कहती है जो बदल गया वह सत्य, वो मिथ्या है। तो रूप मिथ्या है, सही जो तत्व है जो सत्य है वो अनुभव करता है, वो मैं हूँ। इस तरह से संपूर्ण अस्तित्व मैं ही हूँ, मेरे ही रूप है सारे, जो कि आपने
गुरुदेव
देखा ही।
प्रणाम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा
बोलिए।
रोकना चाहूंगी। एक प्रश्न इनका था अभी जो थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रही थी दीदी, कि आपने कहा कि मृत्यु के बाद, जैसे आप बोल रहे हैं कि अनुभव करता सत्य है और बाकी तो जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सब मिथ्या है, लेकिन मृत्यु के उपरांत जैसे जगत का जो अनुभव है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है, और सारी इंद्रियां नष्ट होने के बाद वो अनुभव भी सब समाप्त हो जाते हैं, तो फिर अनुभव करता कहाँ है? फिर अनुभव अनुभव और अनुभव करता उसका ज्ञान फिर कहाँ गया? अनुभव कहाँ, अनुभव करता कहाँ गया फिर? ये इनका
मृत्यु में
प्रश्न
क्या
था।
नष्ट होता है? मृत्यु में क्या नष्ट होता है? अनुभव नष्ट होता है या अनुभव करता नष्ट होता
जगत का अनुभव जो कि
है?
इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, तो इंद्रियों के नष्ट होने के कारण जगत का अनुभव भी समाप्त हो।
शरीर, शरीर नष्ट है, शरीर का नाश होता है ना, मृत्यु मतलब शरीर का नाश। और अगर अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व अनुभव और अनुभव करता ही है, तो क्या अस्तित्व का नाश हो जाता है क्योंकि एक शरीर वहां पे नष्ट हो गया, मिट्टी हो गया?
नहीं,
संपूर्ण अस्तित्व चला गया क्योंकि एक शरीर गायब हो गया। मैं
उसके
संपूर्ण
रूप
अस्तित्व
रूप
हूँ,
रूप नष्ट हो गया मगर अस्तित्व तो वही है।
एक छोटी सी चीज नष्ट हो गई, सारे अस्तित्व, बाकी सब वैसा ही है। जगत भी वैसा ही है, अनुभव करता भी वैसा ही है, सारे लोक वैसे ही हैं, अनुभव भी वैसा ही। मान लीजिए एक रूम में अगर दो कैमरे रखें और दोनों कैमरे वही वही दृश्य दिखा रहे हैं थोड़ा अलग अलग जगह से, और एक कैमरा खराब हो जाता है मान लीजिए, तो क्या आप कहेंगे कि सारा का सारा रूम नष्ट हो गया? क्या आप कहेंगे जो कैमरे को देख रहा है, जो कैमरे से चित्र देख रहा है मान लीजिए, क्या वो नष्ट हो गया क्योंकि एक कैमरा नष्ट हो गया? कैसे कहेंगे हम?
कैमरा नष्ट हो गया कहीं।
हाँ, एक चीज, एक वस्तु नष्ट हो गई, बाकी दृश्य देखने वाला दूसरे कैमरे से देख रहा है, जो दृश्य है वो पहले जैसा ही है, एक दृष्टिकोण चला गया बस। वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं कैमरे की तरह है, कुछ देख रही है, कुछ कुछ महसूस कर रही है, अनुभूति हो रही है, मृत्यु में वो बंद हो जाती है। लेकिन अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है, वो हर हर शरीर से वही देख रहा है, हर दृष्टिकोण से एक ही देख रहा है, वो है अस्तित्व,
यहाँ पे इनको
अनुभव
मुझे लगता है कि एक संशय है कि अनुभवकर्ता कितने हैं। उनको लग रहा है बहुत सारे अनुभवकर्ता, एक शरीर नष्ट हो गया तो अनुभव के नष्ट होने से सब समाप्त हो गया,
भी।
तो
अच्छा,
इनको ये जानना जरूरी है कि अनुभवकर्ता सभी एक ही अनुभवकर्ता है।
अस्तित्व स्वयं अनुभव कर, मैं अस्तित्व स्वयं हूँ, इसमें कोई शंका है क्या आपको कि मैं अस्तित्व नहीं हूँ, कुछ शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज हूँ?
नहीं, मैं
हाँ।
अस्तित्व हूँ, अनुभवकर्ता हूँ, दृष्टा हूँ, स्वयं
कितने अनुभव
मैं।
करते देखे हैं आपने, कितने दृष्टा देखे हैं आज तक जीवन में?
किसी का नहीं देखा है मैंने।
न, जो आप है वो तो आप जानते होंगे, उसके बारे में
हाँ
एक ही देखा है, एक ही मिला है आज तक, ऐसा कैसे देख तो नहीं सकते, एक ही मिला है वो मैं हूँ। और मैं भी यही कहूंगा कि एक ही मिला है मुझे, तो सभी यही कहेंगे।
इनका जो वाक्य था वो कुछ ऐसा ही था कि वो भी दृष्टा है, मैं भी दृष्टा हूँ। तो कितने दृष्टा हैं इनका, इसमें भेद है कि नहीं है, और कितने दृष्टा हैं उनका? बार बार यही कहना मैं सुन रही थी कि वो भी दृष्टा है, मेरे हस्बैंड भी दृष्टा है, सभी दृष्टा है। तो कितने दृष्टा है ये उनको थोड़ा
ठीक।
सा मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है यहाँ पे।
अच्छा, मान लीजिए आपके घर में 5 टमाटर है, वो टेबल पे आप रखते हो 5 टमाटर। टमाटर बड़े काम की चीज है, तो आपको कैसे पता कि वो 5 है? तनुजा से पूछूं, कैसे पता 5 है?
अनुभव।
हाँ, आप गिनते होंगे ना उनको, सामने पांचों के पांचों है, अब गिनती करते होंगे कि 1 2 3 4 5। अब मुझे दृष्टा की गिनती करके बताइए, शरीरों की गिनती नहीं। आपने मेजर करते समय भी जो दूरी है, मेजर करते समय भी स्वयं को शरीर बोला, शरीर नहीं बोलना है स्वयं को, दूसरों को भी शरीर नहीं बोलना है। अब मुझे गिनती करके बताइए दृष्टा की,
दृष्टा तो एक ही है।
वो अलग बात है, गिनती संभव है क्या ये बताइए पहले।
नहीं,
हाँ, वस्तुओं की गिनती संभव है, क्योंकि वस्तुओं का अनुभव होता है, सब साथ में रख दी जाए तो गिनती संभव है। दृष्टा की गिनती संभव है क्या? क्योंकि वस्तु नहीं है, हमने कल बात की परसों, वो वस्तु नहीं है, दृष्टा वस्तु
अनुभव
नहीं है।
करता है।
देखिए, गिनती उसकी हो सकती है जिसका रूप और रंग है ना, वो दिख जाता है। अब बोल सकते हैं कि हाँ, इससे ये अलग है, पहला वाला टमाटर दूसरे से अलग है, दूसरा वाला तीसरे से अलग है, इस तरह से उसकी गिनती हो सकती है। दृष्टा का कोई रूप और रंग नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई अनंत है, सर्वव्यापी है, अब गिनती कैसे होगी? जैसे पानी की गिनती हो सकती है क्या? जो
नहीं,
नल में है पानी, जो नदी में है, जो समुन्द्र में है, जो बादलों में है, जो आपके गिलास में, पानी कितना है?
तब एक उसके रूप
पानी के
अलग
तत्व, हाँ, उस अलग अलग जगह पड़े हैं, अलग अलग उनका घेरे में है, वो सीमित। इसी तरह से आकाश कितने हैं?
अलग, एक ही अनंत।
एक ही है, एक ही है, वो अनंत है, वस्तु नहीं है आकाश। आकाश वस्तु नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते 1 2 3 4 5 6 आकाश, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वस्तु नहीं है। वस्तुओं की गिनती हो सकती है, वस्तु के मामले में माना जा सकता है कि हाँ, उस गिनती की धारणा लागू होती है। जो वस्तु नहीं है, जैसे पानी है, आकाश है, हवा है, उस पर ये गिनती की धारणा लागू नहीं होती, उस पर गिनती शब्द लागू नहीं हो सकता। तो आपको आकाश का ज्ञान हो रहा है अभी, वहां पे जहां पर भी आप, हो रहा है?
आकाश को देख पा रही हूँ,
हाँ, है ना आकाश वहां पे?
है वहां।
मैं भी कहता हूँ कि यहाँ पे भी आकाश है। अब क्योंकि मैंने कह दिया कि आकाश है और आपने भी कह दिया आकाश है, कितने आकाश हो गए? पद्मजा ने भी कह दिया कि आकाश है, अब कितने हो गए?
गिनती हो ही नहीं सकती क्योंकि वही आकाश आप भी देख रहे हैं, वही आकाश मैं भी देख रही
हाँ, इसमें कोई शंका तो नहीं है?
हूँ। नहीं,
क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा आकाश शून्य है, आप कहेंगे हाँ शून्य है, पद्मजा भी कहे, मैं कहूंगा आकाश के कोई रंग रूप नहीं है, आप भी कहेंगे हाँ नहीं है, इस तरह से हम उनके गुण गिनाएंगे। मैं कहूंगा यहाँ पे सितारे दिख रहे हैं, आप कहेंगे हाँ सितारे दिख रहे हैं, मैं कहूंगा नीला होता है दिन में, आप कहेंगे हाँ नीला होता है, इस तरह से हम जानेंगे कि हम एक ही चीज को देख रहे हैं, एक ही चीज का ज्ञान हो रहा है। अब यही चीज दृष्टा के बारे में करके देखते हैं क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा। मैं कहूंगा शून्य है, आप क्या कहेंगे? शून्य है। मैं कहूंगा अनंत है, आप अनंत है, अमर है, हाँ अमर है, उसका वो रंग रूप नहीं है, आप भी कहेंगे रंग रूप नहीं है, अब कितने हो गए दृष्टा?
एक ही, एक भी नहीं मतलब।
नहीं, एक तो होगा आकाश एक है, दृष्टा भी एक होगा। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, वैसे दृष्टा सर्वव्यापी है, क्योंकि वही बैकग्राउंड है, वही पृष्ठभूमि है जिसमें सारे अनुभव आ रहे हैं। अगर एक आदमी की मृत्यु होती है तो वो कह नहीं पाएगा कि आकाश है, वो नहीं कह पाएगा, देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका शरीर नष्ट, वहां कहने वाला ही नहीं बचा कोई, लेकिन बाकी सारे शरीर है, वो कहेंगे हाँ आकाश है। उसी तरह से एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वो बेचारा बोल नहीं पाएगा, मरा हुआ शरीर वो बोल नहीं सकता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन बाकी शरीर बोलेंगे कि दृष्टा है। वो उसी दृष्टा की बात कर रहे होंगे जो मरने से पहले कर रहा था, एक ही दृष्टा, वस्तु नहीं है इसलिए उसकी गिनती नहीं हो सकती। अस्तित्व स्वयं है जो हर रूप में प्रकट है, उसका एक आध रूप गायब हो जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करोड़ों करोड़ों मतलब अनंत रूप है उसके, जो हर सेकंड बनते बिगड़ते हैं। आपने देख ही लिया हो, समय तो मतलब मिथ्या है, वो तो पूरा पहले ही पूरा बिगड़ चुका है, पहले बन चुका है, हर चीज जो बनना है वो बन गई है, जो बिगड़नी बिगड़ गई, सब हो गया वहां पे, तो एक ही है, वो अस्तित्व तो स्वयं है, किसी की मृत्यु होने से वो कहीं नहीं जाता, जिसकी मृत्यु हो गई वो चला गया। जैसे एक कैमरा टूटने से आपका घर भी नहीं जाता, कैमरे में दूसरे कैमरे से दिख रहा है वो घर, आपके 100 200 अनंत कैमरे लगा दें तो क्या होगा? जितने भी कैमरे आते जाएं जाते जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नए बनते जाएंगे पुराने जाते जाएंगे, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, नए रूप आते हैं, अनुभव शुरू होता है, चला जाता, और अनुभव भी आता जाता नहीं है, कहीं और से हो रहा है वो, किसी और कैमरे से दिखाई दे रहा है, किसी और दृष्टिकोण से वो अनुभव चल रहा है। ये सब मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ जो कई रूपों में पाए जाते हैं, मैं ही हूँ जो अलग अलग रूपों में प्रकट होता है और फिर विलय होता है, और ये अनंत काल से ऐसा चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहा, छुट्टी नहीं। मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु केवल बदलाव है, वो भी मिथ्या है, जो बदल गया वो मिथ्या है, सपना है, मृत्यु नहीं होती किसी की। वो रूप जो है, जो जैसे मिट्टी का घड़ा है, वो अगर उसका उसको ढाल के कुछ और बना दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, घड़ी की मृत्यु हो गई? नहीं, हम कहेंगे कुछ और रूप में प्रकट है। इसी तरह से ये अस्तित्व है, हर तरह के रूप में प्रकट है, और उसके पीछे हमने थ्योरी बना रखी कि स्मृति है एक तरह की, जो तरह तरह के रूप लेती है, स्मृति ही है तरह तरह के रूप लेती, जिसके बारे में कार्यक्रम में बताया गया, मतलब यहाँ 3 दिन में बताना संभव नहीं इतना। तो सब संपूर्ण अस्तित्व में ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ, एक ही हूँ, और ये सारे रूप मेरे ही हैं, और जो भी प्रकट होता है वो मेरे ही अंदर होता है, मेरे ही अंदर विलीन होता है। जहाँ अनुभव है वहीं अनुभव करता है, दोनों के बीच दूरी नहीं है, एक ही, और एक ही है सब कुछ, एक ही अनुभव भी, एक ही अनुभव करता भी, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जो अस्तित्व है उसी को अलग अलग दृष्टिकोण से, और हम जानते हैं क्यों देखा, कि सब कुछ एक साथ नहीं देखा, सब कुछ एक साथ देखना संभव नहीं, छोटे छोटे रूपों में, सीमित रूपों में अनुभव हो संपूर्णता का, क्योंकि वो अनंत है, अनुभव होते रहेंगे, क्योंकि मैं ही अस्तित्व हूँ, मुझे ही होते रहेंगे, और कोई नहीं, और किसी को नहीं होगा। मैं जब कहता हूँ मुझे होते रहेंगे, मतलब आपको भी होते रहेंगे, आप भी वही हैं, आप भी वही दृष्ट है, सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसा है, देखने में एक जैसा है, ऐसा नहीं, कॉपी है एक दूसरे की, ऐसा नहीं है, एक ही है आकाश, एक ही। तो जब अनुभव और अनुभव करता दोनों एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं अनुभव क्रिया, और अनुभव क्रिया वो अवस्था है जिसमें कि हम ये देख पाते हैं कि न अनुभव अलग है न अनुभव करता अलग, हम ये देख पाते हैं कि वो एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। क्या वो देख पा रहे हैं अभी, कैसे इस बात का ज्ञान हो रहा है अभी, ध्यान दीजिए,
सब जगह मैं हूँ।
आप अलमारी को ही देखिए सामने, जो आप कहाँ पर है
मेरे सामने।
अगर शरीर को भूल जाए आप, शरीर को भी सीन का भाग बना लीजिए, शरीर को भी आप उस पर्दे पे देखिए, अब कौन किसके सामने है, शरीर भी दृश्य हो गया, अब किसके सामने क्या है,
ये समझ नहीं,
ये अनुभव क्रिया, ये समझना कठिन है। शब्दों में बांधना कठिन है। अगर आपने कहा कि अलमारी मेरे सामने है, अगर वो जो मैं हूं उसको भी दृश्य में मिला दिया जाए, तो क्या है, किसके सामने, उस दृश्य में अनुभव करता दिखाई देता है कभी, नहीं, वो भी मिल गया है वहीं पे, जहाँ दृष्टा है वहीं पर दृश्य है, जहाँ अनुभव करता है वही अनुभव है, और यही अनुभव क्रिया है। जहाँ पे भेद नहीं किया जाए कि अनुभव वो है जो सामने है और दृष्टा ये है जो यहाँ पर है, अंदर है, आप कहेंगे नहीं विचार आ रहे हैं मन में, ऐसा कुछ आ रहा है, इच्छाएं आ रही है, उनको भी दृश्य में मिला दीजिए, अब कहाँ पर है वो सारा, आपको केवल इतना ज्ञान होगा कि कुछ हो रहा है, बस इतना ही ज्ञान होगा, और ये है अनुभव क्रिया। अब 2 मिनट शांत होकर देखिए, क्या ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस हो रहा है, न कुछ अंदर है न बाहर है, न सामने न आमने, न बाजू में है न दाएं न बाएं।
मुश्किल है ये ब्रह्म ज्ञान समझने, नहीं समझ पा रही हूँ।
दूरी का जो अनुभव नहीं है वो उसका कॉन्सेप्ट अभी तक इनको क्लियर नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी उनको डिस्टेंस दिख रहा है, मेरे में अपने में उनको डिस्टेंस दिख रहा है, वो वस्तु जैसे अलमीरा है उसमें उनको दिखता है, दूरी दिखती है उनको।
क्या हो रहा है मुझे बताइए, कितने दिख रहे हैं आपको, अनुभव अलग और अनुभव करता अलग दिख रहे हैं?
नहीं, साथ में है दोनों, मगर
और क्या है, दीवार कहाँ पर है दोनों के बीच में, लाइन कहाँ खींची है आपने, ऐसा तो नहीं कि अनुभव बाहर है अनुभव करता अंदर है, ऐसा तो नहीं?
कैसे होगा ये ज्ञान, मेरे को समझ नहीं।
मुझे ये बताइए कि आपको क्या अभी क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में, आपके सामने जो दृश्य है उसके बारे में क्या समझ में आ रहा है?
वो मेरे सामने ही दिख रहा है मुझे।
मेरे सामने ये मैं कौन है,
अनुभव करता दृष्टा जो देख रही,
कितनी दूरी है जो दिख रहा है उस, जो सामने है और जो दृष्टा है उसमें कितनी दूरी, कितनी दूर दिख रहा है दृश्य आपको दृष्टा से?
नजदीक है।
आपके जो विचार आ रहे हैं आपके मन में कितने दूर आ रहे हैं,
शरीर के भीतर से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो आप, हो कहाँ पे अभी, दृष्टा कहाँ है पहले उसकी स्थिति बताओ, कहाँ पर है वो अभी, जब वो देख रहे हो मुझे लग रहा है कि शरीर को मानकर ही देख रहे हो, शरीर क्या है,
शरीर को भी दृश्य देख की जितना देखना है, शरीर भी दृश्य है, मैं नहीं हूँ शरीर, जो आपने पहले गलती की थी कि आपने डिस्टेंस जो है दूरी नाप ली थी शरीर से, वैसा ही हो रहा है अभी, शरीर को भी दृश्य की तरह ही देख, मैं नहीं हूँ शरीर, भी दिख रहा है, जो विचार आ रहे हैं वो भी दिख रहे हैं, भावनाएं वो भी दिख रही है, बताइए जो भी दृश्य है वो कितनी दूर है आपसे दृष्टा से, वहां पे ध्यान रोकिए अपना, ध्यान को रोक कर, इसको हम कहते हैं समावेशी ध्यान, लेकिन जरूरी नहीं है, इस बीच वाली जगह पर ध्यान रोकना है आपको, आपका मन कहेगा दृष्टा इस साइड है, दृश्य उस साइड है, ये जो मन कह रहा है उसको भी दृश्य में मिला देना, ये जो वृत्ति चल रही है उसको भी दृश्य में मिला देना, यहाँ ये भी हो रहा है। अब क्या हो रहा है,
ये हो नहीं पा रहा।
दूरी की क्या परिभाषा है? दूरी विज्ञान के, थोड़ा सा विज्ञान, दूरी की क्या कोई चीज दूर है तो वो कैसे परिभाषा दूर है?
इसको देख नहीं पा रहे हैं, वो बहुत सामने पास है।
कोई भी आपको जो वस्तु दिख रही है वो कितने देर में पा रही है, मतलब विद इन सेकंड, सेकंड भी नहीं लगता है, मतलब आप देखते हो और वो दिखता है, तो यहाँ पे दूरी कहाँ पर है, मतलब ये आपको समझना है कि दूरी कहाँ पे दिख रही है आपको, समय कितना समय लगता है, कितनी दूरी है?
समय तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जहाँ देख रही
हूँ बोल सकते दूरी है आपसे, वो वस्तु कितनी देर में आप देख पा रहे हो उसको, कितना समय लग रहा है?
तुरंत तुरंत,
फिर
कोई दूरी नहीं।
तो दोनों में भेद कैसे हो गया, अनुभव और अनुभवकर्ता में, जब दूरी नहीं है दोनों में, किस चीज में दूरी नहीं हो सकती? जो एक है उसमें दूरी नहीं होगी ना।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिट्टी और घड़े में कितनी दूरी है,
बिल्कुल भी नहीं एक साथ ही।
हाँ इसी तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ ही, दूरी नहीं। क्यों दूरी दिखाई पड़ती, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं और शरीर से दूरी नापते जा रहे हैं आंखों से, मैं शरीर नहीं हूँ इतना जान लीजिए, इतना देख लीजिए, मैं वो पर्दा हूँ जिसमें शरीर भी दिखता है, मन भी दिखता है, जगत भी दिखता है, पर्दे और चित्र में दूरी नहीं। जब ये दूरी मिट जाए, जो ये अज्ञान मिट जाए, उसको हम कहते हैं अनुभव क्रिया या सहज समाधि, इसको हम कहते हैं सहज समाधि।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो नहीं हो पा रहा है,
यही है और कुछ नहीं हो सकता, अनुभव क्रिया के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, यही है। ये अस्तित्व स्वयं है जो ऐसा ही है, जो हो रहा है उसको बंद करना है। क्या हो रहा है कि आपका चित्त कुछ कहानी गढ़ रहा है, ये चीज दूर है ये चीज पास है, वो कहानी फेंक देनी है, वो जो विचार आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, जो सामने है, जो आपके चित्त के परे है, जो बुद्धि के परे है,
ये ज्ञान कैसे होगा गुरुदेव? यही मैं सोच, मैं फंस गई हूँ, ये तो मुझे भी अभी तक नहीं आ रहा।
जो अज्ञान है वो हटने के बाद ज्ञान हो जाएगा। आपका अज्ञान क्या कहता है कि अनुभव कहीं और है और मैं कहीं और हूँ, है ना?
नहीं, मेरे को वो तो मैं मानने को तैयार हो जा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ देख रही हूँ मैं अनुभव कर रही हूँ।
तो क्या फिर कहाँ पर आपकी परेशानी, मतलब समस्या कहाँ, क्या क्या चीज देख जानना है आपको?
ये दूरी जो मुझे अभी लग रही है वो दूरी मिट नहीं रही है, मतलब दूरी ही दिख रही है अभी भी।
कितनी दूरी है बताइए, और किसके बीच नापी है आपने?
वही तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे।
क्या हो रहा है कि वो आपका चित्त स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इतना बड़ा शॉक, कई वर्षों से वो अपने आप को अलग करता रहा है बाकी वस्तुओं से, अभी भी वही कर रहा है, अब उसको दिखाया जा रहा है कि देखो अलग कुछ भी नहीं है, जो तुम जो अलग कर रहे हो तुम खुद ही दृश्य हो, तुम में और मुझ में भी दूरी नहीं है, अब वो स्वीकार नहीं कर पा रहा।
हाँ, इस शरीर को ही अपना घर समझ रहा है।
हाँ तो हम एक और टेक्निक उपयोग करते हैं, देखते हैं उससे होता है कि वो अंदर बाहर का जो, अंदर बाहर की जो रेखा है, सीमा रेखा कहाँ पर खींचेंगे आप, अंदर कहाँ, किस रेखा के अंदर अंदर कहेंगे, किस रेखा के अंदर बाहर कहेंगे,
किस चीज की सीमा?
अंदर बाहर की
अनुभव कर,
आपका चित्त कह रहा होगा ना कि जो अलमारी है वो बाहर है, अनुभव करता अंदर है।
हाँ यही।
हाँ तो आप बताइए कि सीमा रेखा कहाँ पर खींची गई है, किसके बाहर क्या है?
सीमा रेखा तो नहीं पता मुझे, मगर मुझे ये लग रहा है कि ये बाहर है, मैं अंदर हूँ।
हाँ
कहाँ
लेकिन
हूँ?
वो जो अंदर बाहर की कोई रेखा तो होगी, जैसे आप घर के बाहर कोई वस्तु है, घर के अंदर कोई वस्तु है, तो आप क्या कहते हो, दरवाजे के अंदर जो है वो घर के अंदर है, दरवाजे के बाहर जो है बाहर है। अब आपने यहाँ पर कौन सी सीमा रेखा खींची है, जिसके कि बाहर परे कुछ है तो वो बाहर हो गया, और जिसके इस तरफ कुछ है तो वो अंदर हो, कहीं तो परिभाषित होगी वो रेखा, किसको अंदर कहते हैं आप, किसको बाहर कहते हैं, अनुभव किसके बाहर है?
मुश्किल है ये प्रश्न का उत्तर देना।
हाँ, और अगर कोई उत्तर ना है तो इसका मतलब है कि वो सब बनावटी है मामला। बहुत से लोग कहेंगे जो शरीर के बाहर है वो बाहर है ना, शरीर की सीमा है मेरी, शरीर की सीमा के बाहर जो भी है वो मेरे बाहर है, ऐसा कहते हैं लोग, और वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शून्य हूँ जो शरीर का दृष्टा है, शरीर भी बाहर हो गया ना फिर। और फिर लोग कहेंगे नहीं ठीक है शरीर बाहर है, लेकिन जो मन है, मानसिक अनुभव, भावना है या विचार, वो अंदर है मेरे, लेकिन उनका भी तो अनुभव होता है, तो वो भी बाहर हो गए, अब सब कुछ बाहर हो गया, इसका मतलब है कि वो जो अंदर बाहर का जो भेद है वो मिथ्या है, भ्रम है, न कुछ अंदर है न कुछ बाहर है, सब एक जगह है, वही आपको अनुभव हो रहा है अभी, सब एक जगह ही हो रहा है, लेकिन चित्त नहीं मान रहा है, कहता पुराना लेकर आओ, पुराना लेकर आओ कह रहा हूँ।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव?
कुछ नहीं, जो आपका ज्ञान है उसको त्याग देना है कि ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ नहीं होगा, वो कोई बड़ा अनुभव नहीं है, बस जो है वो है, इसको हम कहते हैं तथाता भी कहते हैं इसको संस्कृत, जो है वो है, शांत बैठ के बस देख लेना एक बार।
मतलब अभी ज्ञान, अज्ञान भरा हुआ है मेरे में, अभी ज्ञान नहीं आया है। तभी ये नहीं कर
निगाह
पा
भी
रही
हो
मैं,
गया, लेकिन वो पुरानी आदत जा नहीं रही है, वो इतनी जल्दी जाती है।
क्योंकि
और
मैं तो
उसके
झूठ
बाद
झूठ बोल नहीं पाती हूँ, यही हो रहा है
हाँ,
मेरे।
तो वो मान नहीं रहा है, लेकिन कोई कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आपको जो रोज के काम करने हैं, रोज का जो जीवन जीना है, वो द्वैत में ही जीना है। उसमें फर्क करना ही पड़ेगा कि अनुभव मैं नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, वो शरीर से काम चल रहा है, मेरा जीवन शरीर मेरा है, ये मानना ही पड़ता है। लेकिन सत्य ये नहीं है, सत्य कुछ और ही है कि जो भी दिख रहा है वो प्रतीत हो रहा है, और वो मुझ में ही प्रतीत हो रहा है, तो मैं ही हूँ जो प्रतीत हो रहा हूँ मुझे अलग अलग रूपों में, ये सत्य। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। इसमें कोई शंका हो तो बताइए कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो नहीं रहा कुछ।
लास्ट चैप्टर में फंस गई मैं।
हाँ, बहुत लोग, बहुत कम
गुरुदेव
लोग पाते हैं इसे,
का
नहीं
वो
कर
जो
पा रही
मिथ्या
हूँ।
वाला माया का जो ज्ञान दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा उसे बताया गया, स्थान और समय की मिथ्या बताई गई है। उसको आप एक बार देख लोगे तो बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, समय की मिथ्या और स्थान समझ
जैसे
आएगा
कल भी
आपका।
हम बात कर रहे थे कि स्थान सत्य है या नहीं, ये प्रतीत होता है,
स्थान बदलते रहता है।
प्रतीत होता है, इंद्रियां बताती कि स्थान है ना, और हमने देखा कि इंद्रियां जो भी बताती है वो झूठ होता है, वहां क्या है वो किसी को नहीं पता, स्थान नहीं है वहां। तो ये तो कल्पना करना ही बेकार है फिर, कोई चीजें अलग स्थान पर है, प्रतीत होती है बस अलग अलग, इतना जान लीजिए।
मुझे और होमवर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। जब तक मैं अपने आप को ये समझा नहीं पाऊंगी, तब तक मैं दूसरों को ज्ञान कहाँ दे पाऊंगी।
तो मैंने कहा कि अगर आपको अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में दूरी नहीं दिखी, हो गया ब्रह्म ज्ञान, खत्म, ये समझ में आ गया कि दोनों एक साथ ही होते हैं, हो गया ब्रह्म ज्ञान। उसकी कोई अवस्था नहीं दिखी, जो आपकी जो अभी की अवस्था वही अनुभव क्रिया की है, अगर उसमें से अज्ञान हटा दिया जाए तो अनुभव क्रिया ही है, और अगर अज्ञान भी है तो भी अनुभव क्रिया ही है। इसलिए हम कहते हैं आप सहज समाधि में हमेशा, कुछ करना नहीं है, करने जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ करने से नहीं आएगी, जो पहले से है वो कुछ करने से नहीं आएगा। जैसे मिट्टी और घड़े को एक कैसे कर सकते हैं आप बताइए, क्या करने से एक होगा वो, होगा वो
वो तो एक ही,
एक ही है, उसको नहीं कर सकते। इसीलिए आप अनुभव और अनुभवकर्ता को एक नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास कर लीजिए वो नहीं होगा, क्यों, वो पहले से ही, बस इतना अज्ञान हटा सकते हैं कि वो दो है, ये अज्ञान हटा लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये मानना ही नहीं मुझे, क्योंकि सारा का सारा प्रमाण कुछ और ही कह रहा है, प्रमाण कहता है कि एक है, मैं ढूंढने जाती हूँ दो तो मिलते नहीं है दो, मैं ढूंढने जाती हूँ दूरी मिलती नहीं, सारा का सारा यही हो रहा है, एक ही अनुभव करता मिलता है उस उसी को, सारे अनुभव, कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है,
कोई
इतना हो गया ब्रह्म ज्ञान बस। और जो आपकी जो अभिव्यवस्था है वो अनुभव क्रिया की है, समाधि की, एक एकता की अवस्था है आपकी, अभी दो प्रतीत होता है, अद्वैत है, द्वैत प्रतीत, जो द्वैत है वो अद्वैत में हो रहा है, बस इतना समझना है, ये हो गया ब्रह्म ज्ञान। अब उस अवस्था में आने के जितना प्रयास करेंगे उतना फेल हो जाएंगे, क्यों, वो नहीं हो सकता, जो पहले से वो नहीं हो सकता, वो जो अज्ञान आपके मन में है उतना निकाल के फेंक देना है बस, और कुछ नहीं, वो मानना नहीं है जो चित्त कह रहा है, जो सालों से कह रहा है, उसको स्वीकार नहीं करना है, जो प्रमाण है उसको स्वीकार। अब जैसी भी अवस्था है सब ठीक है, इसके बाद जो भी कह रहा है वो ठीक, जो भी दिख रहा है वो ठीक है, दूरी दिख रही है कोई बात नहीं, ये जान लेना है कि हाँ ये प्रतीत हो रही है दूरी, शरीर से और दूसरी चीजों से दूरी प्रतीत हो रही है, क्योंकि पुरानी आदत यही कहती है कि मैं शरीर हूं। तो ये भाव बना के रखिए आप, साक्षी भाव बना के रखिए और
कि
आप समाधि
दोनों
में
एक ही
रहेंगे।
है।
हाँ
जी
बस हमेशा
ठीक
अपने
है भैया।
साक्षी हो जाना है, और फिर बाकी सब अपने आप होता है, चित्त की वृत्ति का भी साक्षी हो जाना है जो उसमें भेद कर रही है कि देखो यहाँ यहाँ दूरी है, देखो ये अलग अलग है, देखो तुम शरीर हो, ये जो भी बोल रहा है वो चित्त, उसका भी साक्षी, जो है वो अनुभव क्रिया है, जो है वो समाधि, समाधि से छूट नहीं सकते आप, केवल प्रतीत हो सकता है कि वो नहीं रही, केवल प्रतीत हो सकता है कि मैं मनुष्य हूँ छोटा सा, ब्रह्म नहीं हूँ, लेकिन उससे वो सत्य नहीं हो जाता, सत्य वो है जो आपने जाना है। अगर वो माया सामने आती है और पूरी तरह से ढक लेती है सत्य को, कोई बात, कितनी देर रहेगा वो, थोड़ी देर, से बादल आते हैं सूरज को ढक लेते हैं, सूरज तो कहीं नहीं जाता, तो वहीं थोड़ी छाया हो जाती है, वैसे ही ये वृत्तियों के आने से अज्ञान छाया हो जाएगी, जो ब्रह्म स्वरूप है आपका वो कहीं नहीं जाता, घबराने की बिल्कुल बात की, अरे ये तो चला गया नहीं, वो संभव ही नहीं है, कहीं नहीं जा सकता, अस्तित्व तो कहीं नहीं जा सकता, अनुभव करता कहीं नहीं जा सकता, यहाँ तक कि अनुभव भी कहीं नहीं जाता, बस वो बदल जाता है अनुभव, माया भी कहीं नहीं जाती, वैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, चित्त भी कहीं नहीं जाता, उसमें घटनाएं बदलती, बस ये अनंत काल तक ऐसा ही होगा, यह संपूर्ण ज्ञान अद्वैत वेदांत, यहाँ पे सारा ज्ञान खत्म होता है, अब जानने के लिए कुछ नहीं बचता, अगर फिर भी आपके पास जानने के लिए कुछ हो तो बताइए।
सब कुछ जान तो लिया मैंने।
कोई शंका हो तो बताइए, नहीं, ये चीज आपने गलत बताई थी, या वो चीज समझ में नहीं है, या ऐसा ही क्यों होता है, या मुझे जीवन में अब क्या करना है,
अब जीवन में साक्षी भाव में रहना है, जो दृष्टा दृष्टा देख,
धीरे धीरे जो है चित्रवृत्ति जो है छूट जाएंगी, उसकी एक शांति और आनंद आ जाएगा जो कि अभी भी है, लेकिन वो रोज के कार्य, रोज के काम जो होते हैं, रोज के जो संघर्ष जीवन का, उसमें वो भूल जाते होंगे आप। साक्षी भाव में रहने से वो स्थायी हो जाएगा, भूलेंगे नहीं फिर। बाकी चिंता नहीं करनी कि वो क्यों मुझे दूर दिख रहा है, वो ऐसी चिंता नहीं करनी, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। ज्ञान ये कहता है कि वो नहीं है, दूर दिखती है बस, चीजें दूर दिखती है मुझसे, मैं अलग दिख, कुछ भी नहीं। और अगर आपको अपेक्षा है कि मुझे कोई बहुत बड़ा अनुभव हो जाएगा, जिस जो कि ब्रह्म का अनुभव होगा, वो झूठ है, किसी ने मन में डाल दिया आपके। ब्रह्म ज्ञान बहुत बड़ा होता है, जो आपकी अभी स्थिति वो ब्रह्म ज्ञान की, आप अभी ब्रह्म है, सबसे सरल जो है वो ब्रह्म है, उससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ जो है वो है, इससे सरल क्या होगा? आप उसमें कोई कंसेप्ट नहीं, कोई मान्यता नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ जानने का नहीं है उसमें, क्यों? शून्य है, जानने का भी कुछ नहीं है उसमें, ज्ञान भी नहीं है उसमें, अज्ञान भी नहीं, न इतिहास है, न भूतकाल है, न भविष्य है, कुछ भी नहीं, उससे सरल कुछ भी नहीं है ब्रह्म से। वो मैं हूँ, जो भी जटिलता आई है वो मिथ्या है, वो हमारा ज्ञान है वो सारा, कि मैं मनुष्य हूँ, मेरा भूतकाल है, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है, मेरे संबंध, मेरा ये जीवन है, मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा जन्म हुआ था, ये सब जो है कहाँ से आ गया, ये सपना है, कोई सत्य नहीं है। और फिर हमको स्वीकार भी कर लेना है कि हाँ चलो ऐसा ही रहेगा हमेशा के लिए, इससे छुट्टी नहीं होगी, बदलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन है आनंद। मनुष्य योनि छूटेगी, देव योनि, देव योनि छूटेगी, कुछ और योनि, वो छूटेगा कुछ और, हमें उससे कुछ नहीं करना। पहले से ही मुक्त हूँ मैं, पहले से ही आनंद हूँ, पहले से ही संपूर्ण अस्तित्व में हूँ। अब उसमें ये सब मिथ्या चीजें हो रही है, हमें कुछ नहीं करना, मार्ग ही समाप्त हो जाता है, करने का कुछ बचता नहीं।
है इनकी कुछ पुरानी, अभी तक के इतने वीडियोस वगैरह देखे होंगे या फिर जो भी जहाँ भी पढ़ा होगा, ध्यान और ये सब चीजें जो है इनके अभी भी है चित्त में, अभी भी है जिस पे विश्वास करती हैं वो, कि ध्यान करूंगी तो शायद साक्षी भाव दृष्टा भाव रहेगा मेरा, जो अभी इतना निरंतर नहीं है। तो वही मैं समझा रही थी, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए इनको कि ध्यान क्या है, और मतलब ध्यान 24 घंटे रखा जा सकता है या पर्टिकुलर आप 2 घंटे बैठ के ध्यान करेंगे तभी उसका प्रभाव पड़ेगा या उसका असर देखेगा। ध्यान क्या है इसकी शंका है, सोचती कि ध्यान करने से शायद मुझे बहुत लाभ मिले कुछ।
ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, अगर कोई ध्यान करता हो पाया जाता है तो मैं डांट देता हूँ। ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, मतलब ज्ञान नहीं हुआ फिर उसको, अभी साक्षी है या नहीं वहाँ पे, अभी दृष्टा है या नहीं, बस हो गया, ये हो गया चेतना, हो गया साक्षी भाव। इसलिए कितना ध्यान करना है, कितने घंटे बाद आएगा वो साक्षी, अभी जो सत्य है वो अभी है। हाँ आपको तरह तरह के रंग बिरंगे अनुभव चाहिए तो हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सत्य तो यही सामने है, सरल सा है। ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं, मैंने ध्यान बताया है, फिर भी वो उन लोगों के लिए बताया है जो बेचारे इतनी सी चीज नहीं जान पाते। साक्षी तो हमेशा है, अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा, अभी भी काल ही नहीं है, कालहीन है वो समय ही। अब क्या कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं क्या करते लोग ध्यान में। फिर भी मैंने बताया कि चलो बैठ जाओ एक जगह, ध्यान दो किसी चीज, और फिर मैंने बताया उसमें अनुभवकर्ता का समावेश करने, मतलब मैंने जो अनन्य ध्यान बताया है वो एक सीढ़ी है उन लोगों के लिए जो सीधे समावेश नहीं कर सकते, और फिर समावेश ही कर ध्यान करते ही आप साक्षी भाव में आ जाएंगे। लेकिन वो अब देखेंगे पहले से ही वैसा था, मेरे मन में अज्ञान था कि ध्यान करने से हो रहा है, आप देखेंगे पहले से ही वैसा है, साक्षी पहले से ही है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, मन भूल जाता है, भटक जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं हो रहा, भटकता भी तो भटकता रहे, मैं तो साक्षी हमेशा से। इस तरह की एक लक्ष्यहीनता सी आ जाती, चिंता नहीं रहती किसी चीज की, साक्षी है क्या, अच्छा हाँ है, अब वो कीजिए जो आपको पसंद, सरल जीवन बिताइए। एक दो बार और चेक कर लेना कहीं चला तो नहीं गया, नहीं तो अनुभव हो रहे, मतलब मैं भी हूँ, कुछ भी अनुभव हो रहा है मैं हूँ जो कर रहा हूँ, कितना भी ध्यान कर लीजिए मैं ही हूँ, ध्यान का साक्षी भी मैं हूँ, ध्यान का दृष्टा भी मैं। तो मैंने बताया तो है, काफी कुछ बताया, और वो उसका कारण है, वो चित्त की ट्रेनिंग के लिए है, सत्य जानने के लिए नहीं चाहिए ध्यान आपको। जो चित्त को जो बिगड़ गया है, मतलब पूरी तरह से चित्त आपका, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो ध्यान व्यान और प्रयोग बताए गए हैं। आपको पता ही नहीं सपने में क्या होता है, आपको पता ही नहीं सूक्ष्म अवस्था में क्या होता है, नींद में क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पता नहीं है। अब वो जानने के लिए वो सारी टेक्निक्स बताएगी, और वो उन्हीं को करवाई जाती है जो मेरा कार्यक्रम कर परीक्षा दे, उसके बाद मैं ध्यान देता हूँ उन पे कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे तो वीडियो सब बना रखे हैं और अपलोड कर रखे, लेकिन मैं उनको मार्गदर्शन नहीं देता, मैं जानता हूँ कुछ नहीं कर पाएगा ये कितना भी वीडियो देख ले कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रयोग सफल नहीं होगा उनका। तो अगर आपके प्रयोग में रुचि है, ध्यान व्यान और इस तरह के सूक्ष्म अवस्था और निद्रा अवस्था, ये सब क्या है, योग निद्रा, इसमें रुचि है, तो आपको कार्यक्रम के माध्यम से आना चाहिए, फिर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा वो क्या कर। तो बस साक्षी भाव में रहना है, और वो हमेशा है, थोड़ा सा भटक भी जाए, मन भूल भी जाए तो भी है, और अगर याद रखते हैं तो जीवन बड़ा सा आसान हो जाएगा, न दुख का कोई प्रभाव होगा, न सुख, न कोई संघर्ष होगा जीवन में, न कोई डर होगा, न कोई संबंध होंगे, न किसी से बैर होगा, प्रेम भाव होगा, सब सब मैं ही हूँ, मेरे ही रूप है, संबंध भी नहीं हो सकता, मेरे रूपों में क्या संबंध होगा, इस तरह से बड़ा सरल हो जाएगा। कुछ कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई साधना नहीं है, न कोई मार्ग है इसके आगे, न कुछ जानने का है।
मतलब अब हमेशा साक्षी भाव में रहना है, दिख
जब भी आपका मन करे आप दोबारा सुन ली, और जितनी बार सुनेंगे उतना स्पष्ट होता जाएगा, फिर अब मेरा मेरा एक एक शब्द स्पष्ट होगा, जो वीडियो बना है ना, आप सुनेंगे अब उस वीडियो को तो एक एक ऐसा स्पष्ट होगा वो शब्द, क्योंकि अब आपको
जी
ज्ञान हो गया, जो सत्संग में आप सुनते हैं एक एक वाक्य आपकी समझ में आएगा, कौन गलती कर रहा है, कौन गलत बोल रहा है, तुरंत समझ में आएगा। हाँ
सारे ज्ञान हो गए तो वो एक एक बातें समझ आएगी अब।
बिल्कुल, आप कोई भी शास्त्र खोल के पढ़ लीजिए, सब समझ आएगा क्या लिखा है, तुरंत समझ में। अगर आपकी संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, अनुवाद पढ़ लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। संस्कृत आती है, एक दो शब्द जो है ज्ञान मार्ग में जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो सीख लीजिए, अब आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब जो बड़े से बड़ा पंडित होगा वो भी बच्चा लगेगा, अनाड़ी लगेगा आपको आपके सामने, क्योंकि पढ़ने से ज्ञान नहीं, याद कर लिया उन्होंने सब ज्ञान, उनको बिना गुरु के ज्ञान, तो
अगर
ये
तरुजा
कौन।
को सच में उनका ज्ञान का नाश हुआ होगा भी, अगर उनका सच में ऐसा हुआ होगा उनको अनुभव, या फिर वो सिर्फ काल्पनिक है, वो सिर्फ सोच रही है कि मुझे हो गया, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व में दिखेगा, उनका जीवन बदल जाएगा, ऐसा
हाँ
होगा।
धीरे
जैसे मेरे साथ
धीरे
हुआ,
धीरे
मैं तो मेरा तो पूरा ही व्यक्तित्व ही बदल गया, भाषा बदल गई। गुरुजी ने इतना स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि भाषा पे विशेष ध्यान दें और शुद्धता होनी चाहिए। तो बस वही दिमाग में वही चलता था कि नहीं, शुद्ध बोलना है, जो भी इंग्लिश बोलना है तो ठीक है, अंग्रेजी ही बोले, हिंदी बोलना है तो हिंदी बोले। तो ये सब जो भी उन्होंने गाइडेंस किया, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मेरे व्यक्तित्व और काम में, मेरे कार्य में बदलाव लाने का बहुत ये विशेष, मैं बोल सकती हूँ, उनका एफर्ट रहा है। बहुत मुझे लाभ मिला है, मतलब मेरा तो जीवन ही बदल गया। मुझे लगता है कि अगर सच में आपको ऐसा ज्ञान हुआ होगा, अज्ञान आपका नाश हुआ होगा, तो आपको उसका परिवर्तन अपने जीवन में दिखेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका आपका जो कार्य है करने का ढंग वो भी बदलेगा, आपका आपका दृष्टिकोण बदलेगा। तो इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, इसके लाभ की बात करूँ, तो कोई इसमें मुझे लगता है एक डायरी भर जाएगी, मेरे मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमेशा देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ कर लूँ इनके लिए, गुरुजी के लिए, उनके इस कार्यक्रम के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत मेरे लिए बहुत खुशी होती है मुझे।
तो जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़े मार्गदर्शन,
जी,
पद्म यात्री पूछ
आपका
सकते हैं, अगर
आशीर्वाद
मन।
हमेशा बना रहे, यही मैं कृपा बनी रहे आपकी हमेशा, यही मैं चाहती हूँ कि जब भी मुझे कुछ ऐसी शंका आए तो मैं मन में भी आपको याद करूँ, तो मेरे को रास्ता दिख जाए, यही
बिल्कुल
आशीर्वाद चाहती हूँ मैं आपसे।
कभी
जी
कभी तो बिना बात के आपको उत्तर आ जाएंगे सारे।
बहुत, हाँ जी, वैसे ही वही तो सब मिल जाए मुझे, और क्या चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि हम एक ही हैं, तो ये दूरी तो है नहीं, तो मैंने याद
हाँ
किया और मेरे को उत्तर मिलना चाहिए।
मिलेगा
जी
आपकी हर इच्छा पूरी होगी और आपकी बहुत प्रगति होगी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ही, सभी साधकों के साथ है।
इतना ही
यहाँ पे
पाके
हम
मैं बहुत ज्यादा अपने आप को वैसे भी तृप्त समझ रही हूँ, क्योंकि ये जो शंकाएं मेरी थी वो पूरी दूर हो गई हैं,
बहुत अच्छी बात,
जो कुछ कुछ बचा है वो भी हो जाएंगी, गुरु
कुछ
का
नहीं बचेगा।
आशीर्वाद रहना
हाँ
चाहिए।
कुछ नहीं बचेगा, आप चिंता मत
जी
कीजिए।
जी जी
तो यहाँ पे हम
मैं
कॉल अंत करें, अगर आपका कोई और प्रश्न नहीं तो,
जी
और कभी भी आपका मन हो तो आप मुझे बताइए, हम फिर से बात करें, ठीक है।
जी गुरुदेव, प्रणाम
ओके
गुरुदेव,
प्रणाम,
धन्यवाद।
धन्यवाद।